आज्ञा की आयत बहुत ही खूबसूरत है और मैं सोचती हूँ कि इन दोनों आयतों का आपस में रब्त भी बहुत गहरा है। सुनते हैं, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह तला ने मुसलमानों से उनकी जानों को और इनके मालों को इस बात के इवज में खरीद लिया है कि इनको जन्नत मिलेगी। वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें कत्ल करते हैं या कत्ल किए जाते हैं। इस पर सच्चा वादा किया गया है तौरात और इंजील में और कुरान में, और अल्लाह से ज्यादा अपने अहद को सच्चा करने वाला कौन होगा। और तुम लोग इस तिजारत पर जो तुमने मामला ठहराया है खुशी मनाओ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अत्ताइबून अलाबिदून अलहामिदून, वो ऐसे हैं जो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम करने वाले, रोजा रखने वाले, या राहे हक में सफर करने वाले, रुकू और सजदा करने वाले, नेक बातों की तालीम करने वाले और बुरी बातों से बाज रखने वाले हैं और अल्लाह की हदों का ख्याल रखते हैं। और ऐसे मोमिनों को आप खुशखबरी दे दीजिए। ये थी आयत नंबर 111 से 112, 111 to 112। इनका उन्वान है, फानी वजूद को ला फानी बना लो कदरदान के हाथों में बेचकर। इन आयत में अल्लाह ताला ने एक सौदे का जिक्र किया है, और वो सौदा क्या है कि बंदे का जिस्म और उसका माल जहां लगेगा वही उसकी कीमत देगा। कहीं भी किसी बिजनेस डील की बात हो तो लोग बहुत एक्साइटेड होकर सुनते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ ईमान वाले को एक तिजारत और एक सौदे की दावत दी है। कैसे ये होती है कि जब बंदा अपने माल और अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में लगा देता है तो असल में वो अपने आप को अल्लाह के आगे बेच देता है, बदले में जन्नत लेता है। असल में ये अल्लाह के सुपुर्द करने की कैफियत है। जो बंदा इस दर्जे पे अल्लाह ताला के दीन को कबूल कर ले कि जहां जान की जरूरत पड़े जान, जहां माल की जरूरत पड़े माल दे दे, तो ऐसा बंदा है जिसने अपने आप को इस सौदे में कामयाब कर लिया। आप देखिए कि ये दुनिया एक बाजार है। तस्वुर में लाइए जरा, किसी बाजार में हो वहां हर वक्त सौदे होते रहते हैं, कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं। इसी तरह जो भी शख्स किसी सौदे को बेचने वाला होता है उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि मेरी चीज की ज्यादा से ज्यादा कीमत हो। कुछ लोग जल्दबाज होते हैं, कुछ लोग ना तजुर्बेकार होते हैं, और कुछ लोग बस केयरलेस होते हैं। ये सारे लफ्ज लिखे हैं, आपके काम आएंगे। यानी कब लोग सौदेबाजी में गलती खाते हैं, ना तजुर्बेकारी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, या केयरलेस होने की वजह से। एक शख्स है जिसके पास कोई सौदा है, वो मार्केट में जाता है, पहले ही दुकानदार को पूछता है ये कितने का खरीदोगे। वो उसकी जो कीमत लगाता है कहता है चलो ठीक है दे दो मुझे, और चल पड़ता है। लेकिन एक अकलमंद शख्स होता है, वो कहता है इसको इतने की क्यों दो, चलो अगले से पूछता हूँ, तीसरे से पूछता हूँ। यही हाल खरीदने और बेचने दोनों का होता है। कुछ खवातीन इतनी जज्बाती होती हैं कि पहली दुकान से जो चीज पसंद आई फौरन ले ली, लेकिन अगली दुकान पे गए तो वो कीमत जब उससे 10-15 रुपए कम पे भी मिल सकती थी, लेकिन चूंकि ले चुके थे तो ले चुके थे। इसी तरह याद रखिए कि इस दुनिया में अल्लाह ने जो हमें भेजा है ना, तो हमारा एसेट हम खुद हैं। इसकी फिजिकल फॉर्म तो आप देख लें कि सिर्फ अपने बॉडी ऑर्गन्स को अलग अलग करके बेचना शुरू कर दें, करोड़ों के हम, एक एक गुर्दा लाखों का बिकता है। सारी दुनिया की दौलत लेके भी कोई अपना हाथ नहीं किसी को देना चाहता। कोई आपसे कहे कि ये लो 1 लाख रुपया ले लो और अपना दिल मुझे दे दो, हम तो मुफ्त में दे दें वो और बात है, लेकिन कोई अगर दिल खरीदना चाहे तो कोई नहीं खरीद सकता ना। तो बात क्या है कि जिस्म फिजिकली भी महंगा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कीमती करना चाहा। कैसे? कि तुम अल्लाह के रास्ते में लगाओ। तीन किस्म के सौदे अमूमन जिंदगी में हो रहे हैं। पहली किस्म का सौदा क्या होता है कि लोगों के आगे बिकाते हैं, पीपल प्लीजर्स, लोगों को खुश कर दूं, जो वो कहें करते जाओ। इसमें भी थोड़ा सा नफा तो मिलता है, कोई शक तो नहीं है इसमें। लोगों की नजरों में वाह वाह हो जाती है, लोग आपसे खुश होते हैं। बाज दफा लोग अपनी जान को मुश्किल में डाल लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वर्ल्ड रैकेट में हमारे नाम आ जाए। ठीक है, लोगों ने अच्छा कहा, पसंद की बातें, यानी हर वो काम करना जो लोग मुझसे चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यही सौदा करते हैं कि लोगों को खुश कर लूं, उनकी नजरों में जो अच्छा है वो पहन लूं, जो खा लूं, जैसा लग लूं, और सो ऑन, इस तरह की बात। फिर इसके बाद एक दूसरा सौदा होता है, और वो क्या होता है कि लोग खुद अपने हाथों बिक जाते हैं, सेल्फ प्लीजर्स, नफ्स को पूजने वाले। हर वो काम करेंगे जिससे अपने आप को अच्छा लगे। ड्रग्स में लोग चले जाते हैं, नशा करते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं, एंटरटेनमेंट के तरीके देखिए, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ा ही सस्ता बेच दिया। सिर्फ नफ्स के पुजारी, जो दिल चाहे वो करो। लेकिन एक तीसरी किस्म के लोग हैं, गो के ये बहुत थोड़े लोग हैं, मिनोरिटीज में, ये कौन से हैं जो अल्लाह के हाथों में अपना बेचते हैं, ये गॉड प्लीजर्स हैं। लोग इनको दीवाना कहते हैं, लोग इनको मजनू कहते हैं, लोग इनको देख के कहते हैं इनको हो क्या गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये वो लोग हैं कि जो अपने आप को अल्लाह की निगाहों से देखने लगते हैं, कोई मुझे देख के खुश होता है तो हो, नाराज होता है तो मेरी बला से मुझे क्या लगे। ये दूरंदेश लोग होते हैं, ये वो लोग हैं कि जो बहुत ज्यादा कीमत पा लेते हैं अपनी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाई बिडर को कबूल कर लिया। इनको पता है कि ये फानी वजूद आज इस दुनिया के हवाले किया, कल मरने के बाद शायद ही कोई अच्छी बात कोई हमारे हक में भी कह दे, लेकिन हमने इस मट्टी के वजूद को अगर अल्लाह के हाथों में दे दिया तो वो हमारी बड़ी कदर करेगा। और यही वो कैफियत है कि जिसको अल्लाह ताला ने मोमिन का अल्लाह के हाथों में बिकना है। हर मोमिन की जिंदगी में दो मुकाम आ सकते हैं, लेकिन एक मुकाम कभी नहीं आता। पहला मुकाम क्या होता है कि बंदा भी खुश हो और रब भी उससे खुश रहे। और यकीन करें अक्सर यही वक्त रहता है। रजी अल्लाह अन्हु व रदू अन की ये कैफियत होती है कि अल्लाह बंदे की दुनिया भी अच्छी कर देता है और उसके साथ उसकी आखिरत भी अच्छी कर देगा। एक दूसरा मुकाम क्या आता है कि मोमिन नाखुश होता है लेकिन अल्लाह फिर भी उससे खुश हो रहा होता है। ये कौन सा वक्त होता है? जब कोई मुश्किल आ गई बंदा उस पर भी सब्र कर ले, कोई तकलीफ है, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, लेकिन उसकी कैफियत से अल्लाह ताला जो है खुश होता है कि ये कितने सब्र वाला है। लेकिन एक तीसरा मुकाम जो कभी ईमान वाले की जिंदगी में नहीं आ सकता, उसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे, और वो क्या कि बंदा तो खुश हो और रब उससे नाराज हो। हम खुश हों और हमारी खुशियों में हमारा रब हमसे नाराज हो, समझ लीजिए कि ये बिके हुए शख्स का सौदा नहीं है, इसने कुछ अपने लिए रखना चाहा। इंसान कभी भी बिकी हुई चीज को अपनी नहीं कहता, फिर उसमें तब्दीली करने का तो तसव्वुर नहीं हो सकता। इसी तरह जो बिका हुआ इंसान लोगों के लिए अपने आप को तब्दील कर लेता है, अपनी जात में, अपनी जान में, अपने माल में तब्दीलियां कर लेता है, तो ये वो शख्स है कि जिसका हाल क्या है कि जो बंदा फिर अल्लाह की दी हुई चीज किसी और को दे लेता है। वो लोग जो अल्लाह की बजाय दूसरों के आगे झुकने लगते हैं वो ऐसे ही हैं। अपना आप हमने लोगों के आगे बेचकर अपने कितने माबूद बना लिए जो कभी हमसे खुश नहीं होंगे। याद रखिए कि अबूदियत में हुर्रियत है। हम एक रब के बनेंगे तो आजाद रहेंगे, हम दूसरों के लिए होंगे तो कभी आजाद नहीं होंगे। इसीलिए ईमान वाला हर वक्त मुस्कुराता है। कभी आपने किसी ऐसे ताजिर को देखा हो जिसके अंदर खाते एक बड़ी अच्छी डील हो गई हो, लोगों को नहीं पता और वो दूसरों से भी छुपा रहा है कि कहीं मेरा सौदा कोई दूसरा ना तोड़ दे, वो मुस्कुराता है अकेले में। लोग कहते हैं क्या बात है, आज आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उसको पता है कि आज मैं करोड़ों का सौदा करके आया हूँ। घर में इसलिए नहीं बताता कि बेगन मैंने कहना है कि चले ज्वेलर के पास चलते हैं। कभी मुस्कुराते देखे मियाँ को तो समझा करें कि इनकी बड़ी अच्छी आज को डील हुई है। यही खुशी ईमान वाले की जिंदगी में हर वक्त रहती है। ये है वो कैफियत जिसको दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। क्यों पत्थरों को खाकर भी बंदा मुस्कुराता है? क्यों आग में भी चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है? बीबी सुमैया अबू जहल ने उनकी जान भी ले ली इतने तशद्दुद के साथ, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। क्यों हजरत इब्राहिम कहा करते थे कि वो दिन जो मेरे उस आग में गुजरे जो नमरूद ने जलाई थी वो मेरी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे? क्यों? कि ये वो एक सौदे की खुशी होती है। फस्तु बि रब्बी काबा। एक शख्स तीर लगा, लोगों ने उनको शहीद किया और आखिरी लफ्ज ये थे कि फुस्तु बि रब्बी काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। ये है वो चीज जो बंदे को इस छोटी दुनिया से उठाकर एक बड़ी दुनिया का राही बनाती है। उसकी निगाहें ऊपर लगने लगती हैं, लेकिन इसकी कुछ शरायत हैं। अत्ताइबून, अल्लाह का प्यारा होने के लिए ये शर्त नहीं कि बंदा गुनाह करे ही ना। हाँ, गुनाह से बचना चाहे, लेकिन गुनाह हो जाए तो तौबा करे। तौबा का लफ्ज सबसे पहले है। गौर कीजिएगा इस जुमले पे। हम कहते हैं अल्लाह वाले वो हैं, इन्होंने तो कभी गुनाह ही नहीं किया। ये कौन से हैं भाई, ये किस दुनिया में रहते हैं? नहीं, अत्ताइबून, शर्मिंदगियों के साथ रहने वाले। इंसान इंसान है, फरिश्ता नहीं बनेगा। आबिदून, हमतन इबादत, हर वक्त इबादत की हालत में। इनकी इबादत कोई पार्ट टाइम इबादत नहीं है कि मस्जिद में गए और इबादत करके आ गए। इनका खाना, इनका पीना, इनका सोना, इनका सब कुछ इबादत बन जाता है, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की मर्जियों से करने वाले लोग हैं। आप देखिए कि जो शख्स अल्लाह से सौदा करता है ना, फिर उसका हर अमल उसके लिए इबादत बन जाता है। ये एक ऐसा मैग्नेट है कि जो इंसान की अमाल को इबादत बना देता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला यहाँ हमें दावत देता है कि अपने पीतल को सोना बना लो। आपने कैसे फ्रॉड सुने होंगे, लोग कहते हैं लाओ लोहे की चूड़ियां दो उसको सोने की कर देते हैं, 10 चूड़ियां दो इसको 20 कर देते हैं, और वो ना कभी खुद दिखते हैं ना वो 10 चूड़ियां दिखती हैं। अल्लाह हमारे इस खटिया वजूद को, खटिया क्या कहना, यानी कम कीमत वजूद को, मिट्टी से बना हुआ है, इसको अल्लाह ताला सोने का बनाना चाहता है। जन्नत की औरत जो वो हीरे मोतियों से कीमती औरत होगी। अल्लाह चाहता है इस मिट्टी की वजह से तुम उस सोने की चीज को छोड़ने वाले हो। फिर आगे आप देखिए, अल्हामिदून असाइखून, उनकी जुबान पर रब की तारीफें होती हैं और वो साइखून होते हैं। अल्लाह की राह में गर्दिश करने वाले होते हैं, वो दीन के लिए निकले, जिहाद के लिए निकले, वो इल्म हासिल करने के लिए निकले, वो हज या उमरे के लिए निकले, वो हर वक्त घूमने वाले होते हैं। आज दुनिया में हाल क्या है, जॉब के लिए कोई दूर से दूर जाना चाहे तो लोग कहते हैं जाओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम बच्चों को भी रख लेंगे, हम फुलाम भी करेंगे। बीवियां कई कई साल तक तन्हा रहती हैं मर्द कमाने के में, और जब कोई इल्म या दीन की बात करे तो कहते हैं ये कौन सा दीन है जो आपको घरों से बाहर निकाल रहा है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ इबादत के खौल में नहीं रहते बल्कि और काम करते हैं। अल आमिरून बिल मारूफ, वो लोगों को नेकियों का हुक्म देते हैं, व नाहून अनिल मुनकर, और होते होते वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह, ये अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले होते हैं। इनसे पूछो अल्लाह की बताई हुई शरीयत क्या है, क्योंकि ये वो लोग है जिन्होंने अल्लाह की शरीयत को मोम की नाक नहीं बनाया होता कि जिधर फेरे। इनको पता होता है क्या, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की पुलिस हैं। जैसे पुलिस सरहदों की हिफाजत करती है, अल्लाह के दीन की हदों की हिफाजत करती है, और ऐसे लोग फिर खुशखबरियां पाते हैं। किस बात की, मुबश्शिरिल मोमिनीन, याद रखिए अल्लाह की जन्नत सबसे कीमती नेमत है। जन्नत एक वादे की बुनियाद पे तो दी गई है, नकद इनाम नहीं है। नतीजा क्या होता है कि लोग इस दुनिया की जल्दी मिलने वाली जन्नत को पाने के लिए उस हमेशा के लिए मिलने वाली जन्नत को छोड़ देते हैं। आज दिन रात देखिए हम कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ सौदे हो रहे हैं, क्या उस जन्नत के लिए जिसके लिए अल्लाह ताला हमें खुशखबरियां दे रहे हैं। बस तबशिरु, बशारते दो, खुशियां दो, बीबई को मुबारक दो, इनको तुमने बहुत अच्छा सौदा किया। लेकिन जब कोई बंदा ऐसा सौदा करता है तो इर्द गिर्द वाले तो उसके साथ अफसोस और हमदर्दी और रहम के लफ्ज बोलने लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में उसको क्या कह रहे होंगे कि इसको खुशखबरियां दो, तुमने कैसा सौदा किया। मैं इन आयात को किस तरह महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड ही है, इसलिए मैं महसूस करती हूँ। हालांकि यही चीज आप बहुत और चीजों में भी फील कर सकते हैं। जब कभी कोई कुरान के सफर की तरफ आता है ना, यानी खास तौर पे जब कोई कुरान पाक के किसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करे या कमिट करे कि अच्छा अब मैं बहुत आऊंगी, अब मैं जरूर आऊंगी। आज सुबह भी हमारी एक बड़ी अच्छी साथी ने कहा, वो हंस रही है, कि आज के बाद मैं हर दिन आऊंगी। तो मैं उस वक्त भी सोच रही थी और अभी भी मेरे हमेशा ही जहन में आता है, मैं कहती इनको पता ही नहीं इन्होंने क्या सौदा कर लिया। ये तो आज ये कह रही है ना मैं 2-2.5 घंटे आऊंगी, इनको पता ही नहीं है कि 2.5 घंटे में से बाकी जो 21.5 घंटे हैं वो अब इन्होंने अपनी जिंदगी की खुशियों के बना लिए। यकीन करें, इसमें एक हाईलाइट करने की चीज है, वमन नौफा बिअहदिही मिनल्लाह, ये हिस्सा है। कौन है अल्लाह से ज्यादा सच्चा वादा पूरा करने में? क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर कोई वादे अल्लाह के सच्चे नहीं पाए? यकीन करें अल्लाह इंसान की जिंदगी में कई ऐसे मौके लाता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे से सच्चे वादे होते हैं कि वो फिर कहता है कि अल्लाह तेरे अब जन्नत के वादे भी सच्चे हैं। बाज दफा फिर वो कैफियत होने लगती है कि इंसान वाकई कहता है कि अल्लाह जब दुनिया में ये वादे सच्चे हैं तो तेरी जन्नत भी सामने है। फिर उसको जन्नत सच दिखती है, जन्नत का हक व नारू का हक, अल्लाह तेरी आग सच्ची, तेरी जन्नत सच्ची, क्योंकि तूने दुनिया में हमारे साथ अपने वादे सच्चे कर दिए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने वादों पे यकीन दिला दे और हम कभी भी अल्लाह तआला से बदगुमान न रहें। मा कान लिन नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिल मुशरिकीन, पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को जायज नहीं कि मुशरिकीन के लिए मगफरत की दुआ मांगें अगरचे वो रिश्तेदार ही हों। इस अमर के जाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोस्ती हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआ मगफरत मांगना वो सिर्फ वादे के सबब से था जो उन्होंने उससे वादा कर लिया था। फिर जब इन पर ये बात जाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो इससे महज बेताल्लुक हो गए। वाकई इब्राहिम बड़े नर्म दिल और बुर्दबार थे, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि किसी कौम को हिदायत करने के बाद गुमराह कर दे जब तक कि वो इन चीजों को साफ साफ ना बतला दे जिससे वो बचे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानता है, बिलाशुबा अल्लाह ताला ही की सल्तनत है, आसमान और जमीन में वही जिंदा करता और मरता है, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। ये थी आयत नंबर 113 से 116, इनका उनवान है काफिर के लिए दुआ करके ईमान को बेवकत न बनाओ। एक शख्स सारी जिंदगी अल्लाह को ना माने और अल्लाह की ना माने, कितनी बड़ी ज्यादती है कि बाद में किसी की दुआ की बदौलत उसको वो जन्नत दे दी जाए जो ये पिछली आयतों पे अमल करने वालों को मिली कि जिन्होंने अल्लाह के साथ सौदे किए। इसीलिए कोई शख्स जब तक जिंदा है चाहे वो शिर्क पे कुफर पे बेदीन है उसके लिए दुआ की जा सकती है, और बेहतरीन दुआ किसी मुशरिक के लिए क्या है कि अल्लाह तुम्हें गाइड करे, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। लेकिन जब कोई दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियों और अल्लाह का मुनकर बन के जाए तो उसकी निजात के लिए दुआ करना ऐसे ही है कि कोई शख्स ईमान को बेवकत बना दे। वो अल्लाह के इंसाफ वाले फैसलों की तरदीद करता है, अल्लाह ने इसे मना कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल जहाँ बयान की गई और खूबियां हुई, लअवाहुन हलीम, آہیں بھرنے والے تھے اور بڑے تحمل والے تھے. یہ ہیں وہ دو خوبیاں جو ہر اس انسان کے اندر مطلوب ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا. کیونکہ اگر آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو آپ لوگوں سے زیادہ پینک ہو جائیں گے. دین کے راستے میں بہت ساری ایسی کیفیات گزرتی ہیں کہ واقعی تھوڑی سی غلطی جو ہے انسان کے لیے اس میں بہت ساری خرابیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے, لیکن ایسے وقت میں تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. اور حلیم کا معنی کسی نے پڑھنا ہے تو کل کا جو ہمارا سبق تھا نور القرآن کی کلاس کا, اس میں بات ہوئی تھی. اب وقت ہوتا تو پوچھتی کہ حلیم کون ہوتا ہے. اس میں ہم نے ان کی دو تین ڈیفینیشنز دیکھی تھی, اور ابھی تو صرف دعا ہی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حلیم بنا دے, ہمارے اندر وہ تحمل آ جائے, وہ سکون آ جائے. اور دیکھیے یہ کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتی. اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے نا تو آپ باہر سے سکون والے نہیں بنتے. آپ کا چہرہ بتا دیتا ہے آپ کے اندر کیا جنگ لگی ہوئی ہے. جب اندر ایمان آتا ہے نا تو امن آ جاتا ہے, جب اندر اسلام آتا ہے تو بندہ سلامت ہو جاتا ہے. پھر وہ اچھلتا کودتا نہیں رہتا, وہ ہر وقت اپنے آپ کو ایسے جھوٹے سہاروں کے پیچھے نہیں رکھتا کہ جس کے نتیجے میں وہ بس خوشی کے نام پہ فن کے نام پہ ناچتا اور کودتا ہی رہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایسے ہی تحمل کو اپنے اندر لا سکیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا. اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا, پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا, یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے آیت نمبر 117 سے 118, 117 سے 118. ان کا عنوان ہے پیچھے تو رہے مگر آگے بڑھ گئے. غزوہ تبوک کے موقع پر ایک گروہ وہ نکلا کہ جنہوں نے اپنا بہترین اثاثہ اسلام کے راستے میں دے دیا. ان کی فصلیں کٹنے کو تیار تھیں مگر وہ ان کو چھوڑ کر ایک ایسے سفر میں چل پڑے کہ جس میں سخت گرمی کے ساتھ 300 میل طے کر کے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت اور سلطنت کا مقابلہ کرنا تھا. سامان نہیں تھا, ایک ایک اونٹ پر کئی کئی لوگ سوار کیے جاتے تھے کہ بعض دفعہ کھانے کے لیے ایک ایک کھجور دی جاتی, اور پوچھا جاتا کہ کھجور سے کیا بنتا تھا. کہنے لگے یہ تو اس دن پتا چلا جب وہ بھی نہ رہی. ایسی ایسی جنگیں گزری ہیں تاریخ میں کہ ایک کھجور کو چوستے رہتے اس کی گٹھلی کے گھسنے تک, اور کہتے ہیں جب وہ بھی نہ رہتی تو پھر سوچتے کہ یہ بھی غنیمت تھی. یہ اسلام اتنے پیار سے نہیں آیا جیسے آج پھیل رہا ہے, یہ اتنی آسائشوں میں نہیں آیا جتنی آسائشوں میں آج میں اور آپ اس کو سن اور سنا اور کر اور کرا رہے ہیں. یہ بڑی مشکلوں سے آئی تھی یہ دولت, لیکن آج کے مسلمان نے اس کی وہ قدر نہ کی کیونکہ ہمیں ورثے میں ملا, اور ورثے میں ملی ہوئی چیز کی انسان عموماً قدر نہیں کرتے. اس مشکل مرحلے میں بہت سارے لوگ تو کامیاب ہو گئے, کیونکہ یہ اصل میں ارادوں کے امتحان ہوتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میرے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتا ہے. اور جب مسلمانوں نے اتنے جوش سے ارادہ کیا, اللہ نے کافروں کے دلوں پہ روب ڈال دیا اور وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے. کہا نہیں نہیں ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اسباب کی کمی کے باوجود ہم سے ٹکر لینے آ گئے. اور یہی وہ حقیقت ہے جو آج کے مسلمان سے چھپی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ آنکھیں کھل جائیں. کوئی خون بہائے بغیر مسلمان کامیاب و کامران ہو کر واپس آ گئے. یہ وہ لوگ تھے جو آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ کے جن سے وعدے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی خوش کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. ایک دوسرا گروہ تھا جو معترفین کا تھا, اعتراف کرنے والے. آیت 102 میں ان کا تذکرہ گزر گیا. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دنیاوی مشاغل کی وجہ سے نہیں جا سکے. فوراً یہ احساس ہوا غلطی ہوئی, اعتراف اور شرمندگی کی آگ بڑھی, اور فوراً آنسوؤں کی کثرت نے ان کے اس عمل کی تلافی کر دی اور توبہ کر کے معافیاں مانگ لی. اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا, بلکہ نبی سے کہا کہ ان کے لیے دعا بھی کرو. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اس گناہ کے بعد مزید ٹوٹے اور عاجز ہوئے, غلطیوں کو مانا. اسی طرح ایک تیسرا گروہ تھا جو مخلفین کا تھا, مخلفین پیچھے رہنے والے. یہ ہے آیت 118 کا ٹاپک. یہ تین لوگ تھے, کعب بن مالک, مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ. یہ سفر میں نہ نکلنے کو اپنی کوتاہی سمجھتے تھے, لیکن توبہ کا اور اللہ کی طرف جھکنے کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ بس اس کی تو حد ہو گئی. जब जंग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो लोग पीछे रहते वो बहाने बना के आते रहे टोलियों में। एक तो ये था कि आइंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में खुले मिले रहे, आप हमें बुरा ना कहें। कुछ ये था कि शायद हमारे एतराफ से कुछ हमें भी माले गनीमत में हिस्सा मिले। और ये वो वक्त था कि जहाँ एक झूठ उनको दुनिया के बहुत सारे फायदे दे सकता था, लेकिन काब बिन मालिक इनका वाकया पढ़ने के काबिल है। सही बुखारी में आप इनका वाकया पढ़ सकते हैं, लेकिन यकीन करें ये वो लोग हैं, इन्हीं के नाम पे सूरह तौबा है। इनकी तौबा अल्लाह ने कबूल की थी, और कैसी शदीद तौबा थी। कहते हैं कि मेरे पास कोई कमी नहीं थी सामान की, और ना मेरा कोई ऐसा था कि नहीं जाऊंगा, इरादा भी था, लेकिन इसलिए नहीं गया कि मैं एक दिन बाद चला जाऊंगा। अच्छा अभी नहीं, मेरा सवारी तेज है, माशाल्लाह अच्छे मींस है, मेरी गाड़ी मर्सिडीज है, और मुझे क्या मुश्किल है, बस फरलाटे भरेंगे और चले जाएंगे। इस किस्म की कैफियत आई, और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त आ गया। आप चले भी गए, मैं फिर भी यही कहता रहा कि जाऊंगा जाऊंगा। फिर एक दिन गुजरा, अच्छा नहीं कल जाऊंगा, फिर वो अच्छा अब तो वो दूर चले गए होंगे, अब तो कैसे हो सकता है। ये जैसे आज इस तरह आप देखिए कई लोग कुरान के सफर से हटे हुए हैं ना, कि अब तो माशाल्लाह 12वां पारा चला गया, अब तो पता नहीं क्या होगा, चलो शुरू से नहीं हमने पढ़ा, अब नहीं करते। हर मौके में ऐसा होता है, फौरन परखा करें, पहला पारा छूट गया, चलो अब अगले साल के पारे में जाएंगे। हम 29 पारे जो मिल रहे होते हैं वो नहीं लेते, ये सोच के छोड़ देते हैं कि अगले साल लेंगे, और नहीं पता कि अगला दिन भी नसीब होगा नहीं। हर दौर में ऐसे लोग होते हैं, मौके होते हैं, एक मौका जो छिनता है उसकी बजाय अगले भी जाया कर देते हैं, ये महरूमी की बात है। ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वाकया इबरत है। और कहते हैं फिर वही हुआ कि फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अल्लाह के नबी तो पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। और कहते हैं एक वक्त ऐसा आया कि मदीना में सिर्फ मैं बीमारों, अपाहज और मुनाफिकों को देखता। अब दिल में रिग्रेट शुरू हो गया। जब कभी आप नेकी के किसी मौके से पीछे रहते हैं ना, शुरू में तो जोश होता है, बाद में फिर रिग्रेट शुरू होता है, ये क्या किया, वो क्या किया, और अब बोझ था दिल पे, अब क्या करें। इतने में वो दिन आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबरें हुई, और कह रहे मैं देख रहा था कि लोग जा रहे हैं और आपके सामने झूठे उजर पेश करते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सादा तबीयत और अपने भोलपन, जब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सोच रखने की नीयत से सबको बस माफ करते जाते, अच्छा ठीक है अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे। लोगों ने वाकई जाके बात की, या तजीरून अलैकुम, हम पीछे देख चुके। कहते हैं कि अब मेरे लिए एक इम्तिहान था, लेकिन मैंने उस वक्त कहा कि मैं सच बोलूंगा, और जाके इन्होंने अल्लाह के नबी को सच बता दिया कि अल्लाह के नबी मैं भी बहुत बातें कर सकता हूँ, मुझे भी बहाने आते हैं, लेकिन मैं सच बोलूंगा, मुझे पता है मैं जो भी कहूंगी ना अल्लाह आपको वही के जरिए सच बता देगा, मेरा कोई उजर नहीं था। जितनी फराखी मेरे पास इस वक्त इससे ज्यादा तो पहले कभी हुई नहीं। कहा अच्छा जाओ फिर अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। कहते हैं कि जब मैं ये बात कह के वापस आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे इतना डांटा, कहेंगे तुम कितने बेवकूफ हो, देखो लोग कैसे सच्चे बने हुए बहाने कर करके, और तुझे क्या जरूरत थी सच बोलने की। कह रहे हैं वाकई उनकी बातों से मेरे दिल में ख्याल आया, क्योंकि दोस्तों की बातों से हम बड़े मुतासिर होते हैं। कहते हैं इतने में मुझे पता चला कि एक और शख्स ने भी यही सच बोला है, हलाल बिन उमैया। कहते अब तो मैं जम गया। इससे पता चलता है एक अकेला दो ग्यारह, जब नेकियों में एक से दो होते हैं ना तो जमते हैं। इसलिए आप सबके लिए भी ये एक अच्छी बात है, इसमें कभी किसी नेकी के सफर पे आए ना, यानी कुरान का सफर शुरू हुआ, एक साथी अपने साथ ले लें, एक दोस्त को ले लें बस, फिर आप पीछे हटेंगे वो नहीं पीछे हटने देंगी आपको, क्योंकि इंसान अकेला जो होता है ना वो गिर जाता है। एक अकेली ईंट आप लगाते हैं ना तो वो गिरने लगती है, उस ईंट के साथ जब आप दूसरी ईंट जमा देते हैं ना तो स्ट्रांग होती है, हर ईंट दूसरी को जमाती है, यही दीन का काम होता है। खैर बहरहाल कहते हैं अब तो बस मैंने कहा कि सच बोलूंगा, और इस तरह पता चला कि तीन लोग जो थे उन्होंने सच बोला। अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि इनके साथ सोशल बाइकॉट होगा। ये तारीख का अछूता वाक्य है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इन लोगों का सोशल बाइकॉट हुआ। एक हुक्म था, कोई हर वक्त नसीहतें नहीं करते थे, बस अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह जब तक तुम्हारी तौबा नहीं कबूल कर लेता तब तक तुम जो हो वो इसी तरह रहोगे। 40 दिन की पहले बात हुई, 40 दिन गुजर गए। कहते हैं ये हाल हो गया था कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता और अल्लाह के नबी मेरी तरफ देखते भी ना, मैं इधर उधर होता तो मेरे मुंह पे देखते, और जब मैं सामने देखता तो नजरें चुरा लेते। अपने दोस्तों को सलाम करता कोई जवाब ना देता। अबू लुबाबा इनके हमसाये थे, कहते मेरे रिश्तेदार भी थे, मैं उनको सलाम कर रहा हूँ जवाब नहीं दे रहे। मैं दीवार पे चढ़ गया, मैंने कहा अबू लुबाबा तुम्हें नहीं पता कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से कितनी मोहब्बत करता हूँ। कहा अल्लाह और उसका रसूल जानता है। अब तो और दुखा कि ये अपने होके बदल गए। दाकत रही मोलदी माँ राहुबत, पीछे गजवे हुनैन के सिलसिले में पड़ा, अब यहाँ की जमीन तंग हो गई। आप खुद ही देखें यहाँ जितने हैं, आप जरा यहाँ से उठें और आप एक को सलाम करें और वो चुप कर जाए, दूसरी को करें, तीसरी को करें, आप तो रोने लग जाएंगे कि भाई क्या हुआ आप मेरी सलाम का जवाब नहीं दे रहे। लेकिन वो मुआशरा तंजीम का मुआशरा था, वो एक अमीर की इताअत करने वाले लोग थे, कोई नहीं बोलता। और इस तरह 40 दिन गुजरे, एक कासिद आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, कहा कि अपनी बीवियों को भी अलग कर दो। कहते हैं अल्लाह के नबी क्या तलाक दे दे। कहा नहीं तलाक देने की जरूरत नहीं है, बस इनको इनके मैके भेज दो। कहते हैं कि जो दूसरे सहाबी थे वो बूढ़े थे, उनकी बीवी को अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी खिदमत के लिए, तो मुझे भी लोगों ने कहा कि जाओ तुम भी अपनी बीवी के साथ रहने की इजाजत मांगो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, और इस तरह भी बीवियां भी घर छोड़ के चली गई, तन तनहा अकेले थे। इस हालत में फिर 50 दिन गुजरे और फिर अल्लाह के नबी सल्लम पे ये आयतें नाजिल हुई। और फिर जो लोगों के इनको खुशखबरियां देने के आलम थे कि वही लोग जो कल तक इनसे सलाम नहीं कर रहे थे वो पहाड़ियों पे खड़े होकर आवाजें दे रहे हैं, काब मुबारक हो, काब मुबारक हो, और कहते हैं मेरी जिंदगी का जब से मैं पैदा हुआ ये सबसे बड़ा दिन था। और क्यों ना हो, जिनको दुनिया में पता चल जाए कि उनकी तौबा कबूल हो गई है उनके लिए क्या ये खुशी का मामला नहीं होगा। हम तो ऐसे ही बैठे हुए ना कि हमारे तो गुनाह ही नहीं है, और अगर इंसान को अपने गुनाहों का एहसास होने लगे तो आप देखिए कोई एक बंदा अगर इस बात की वो शिद्दत को देख ले कि जो गुनाहों की आग हमने भड़काई हुई है अगर हमारे वो गुनाह अल्लाह माफ कर दे, क्या वो हमारी जिंदगी का एक अच्छा दिन नहीं होगा? उस वक्त अल्लाह के नबी मौजूद थे, वो उनको बता दिया करते थे। आज हमें एहसास ही नहीं अपने गुनाहों की, इतने खुश हुए कहने लगे अल्लाह के नबी मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, और आज के बाद मैं पूरे यकीन से ये कहूंगा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ये एहसास जो दिया ये मुझे सच बोलने पे दिया। आज हम कितने झूठे बहाने करते हैं, मैं कहती हूँ हम अपनों को जहन्नुम में डाल के जन्नत में जाना चाहते हैं। ये घर है, ये ससुराल है, ये मेहमान आ गए, ये बच्चा छोटा है, ये मियाँ कहता है, ये फुलां कहता है, नहीं, जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जिसको यकीन हो जाएगा ना कि मैंने कब्र में अकेले जाना है, मैंने हशर में अकेले जाना है, मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, यकीन करें ये घर की दौलतें ये नेमतें कभी हमें अल्लाह के रास्ते से नहीं रोकेंगी, हमें अपने कभी भी अल्लाह के दीन से प्यारे नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम लोगों को अल्लाह ताला यहाँ फिर जिक्र इनका करता है कि ये वो लोग हैं कि जिनकी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर दिया, और आखिरी उम्र में ये नबीना हो गए थे और अपने बेटे को ये स्टोरी सुनाते थे जो आज भी हदीस में हमें मिलती है। तो हमारे लिए इसमें बहुत सारे सबक हैं, इसको हमने जब अपनी क्लास RKP और नूरुल कुरान में भी किया था तो मुझे याद है कि वहाँ बहुत डिटेल इनके इस वाक्य से पॉइंट्स में मैंने अमल की बातें लिखाई थी कि हम इससे क्या सीखें। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की आग को भी ठंडा कर दे और हमारी तौबा ऐसी तौबा हो जाए कि वाकई हमारे गुनाहों को बहा के ले जाए।